بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، بھائی گزشتہ سارے درس دو تین دن جو ہوئے وہ غصہ اور اس کا علاج، مختلف طرح کے علاج تھے. آج انشاءاللہ مجلس نمبر 55 ہے، حسد اور اس کا علاج. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ تین دن سے غصہ کا بیان چل رہا تھا، اب آگے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ حسد کا بیان شروع فرما رہے. یہ حسد بھی بڑی خراب باطنی بیماری ہے. آواز آ رہی ہے تو لکھو کہ ہاں ٹھیک ہے. یہ بڑی خطرناک بھی ہے، اس کا چلن بھی بہت زیادہ ہے، یعنی عام بیماری حسد. یعنی یہ بیماری کثرت سے پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر ہمارے طبقے یعنی طالب علموں کے طبقے میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے. پڑھے لکھے طبقوں میں بہت زیادہ ہے، لہذا بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کے ازالے کی فکر کرنی چاہیے، چنانچہ حسد کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں وہ ایک ایک پڑھ لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی ہو جائے گی. ایک ملفوظ میں حضرت والا نے فرمایا کہ یہ ایک تو کیفیت انسانیہ ہے، جس میں انسان معذور ہے. ایک عمل ہے مقتضا پر، اس میں انسان معذور گنہگار ہے. پہلا معذور تھا، ابھی معذور میم الف سے گنہگار ہے. ایک مخالفت ہے اس مقتضا کی، اس میں انسان معذور ہے، یعنی حسد کے غلبے سے کسی کی مذمت کا تقاضا ہو تو اس کی مدح کرو، اگر اس سے اعراض کو دل چاہے تو اس سے ملو، اس کی تعظیم کرو، اس کو ابتدا بالسلام کرو اور اس کے ساتھ احسان کرو. یہ حضرت تھانوی کا ملفوظ تھا. اب ذرا اس کی تشریح سمجھے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کا لفظ تو بہت سنا ہے، حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کے تمام مباحث کو اس مختصر سے ملفوظ میں سمیٹ دیا. سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ حسد کس کو کہتے ہیں. حسد اسے کہتے ہیں کہ دوسرے کسی شخص کو جو اچھائی حاصل ہے اس کی اچھائی سے رنجیدہ ہو کر اس کے زوال کی تمنا کرنا. یا یوں سمجھو کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے کسی کی تعریف کر رہا ہو تو ہمارے دل میں اس کی تعریف بری لگ رہی ہو، اچھی نہ لگ رہی ہو، یہ حسد کی علامت ہے. تعریف بری کر اچھی لگ رہی ہے تو الحمدللہ، لیکن وہ اچھی تعریف کر رہا ہے اور ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے، किसी की खूबसूरती की तारीफ, किसी की इल्म की तारीफ, किसी के काम की तारीफ, किसी के और इल्म की तारीफ, तो मुख्तलिफ होते हैं और हमें मजा नहीं आ रहा है कि मेरी क्यों तारीफ नहीं हो, उसकी क्यों हो रही। तो दिल में जो बुरा लग रहा है ना, यही हसद की अलामत होती है कि अंदर मौजूद है कुछ। हसद की मिसाल समझो, मसलन मेरा एक हम जमात है, क्लास फेलो है, हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं। मेरा साथी इम्तिहान में अव्वल आ जाता है, उसके नंबर ज्यादा आते हैं। अब मेरे दिल में यह ख्याल आया कि इसके नंबर क्यों ज्यादा आते हैं, क्यों ज्यादा आते हैं, वो मुझसे क्यों आगे बढ़ गया। अब दिल में ये ख्वाहिश है कि इसके नंबर कम आए, वो आइंदा अव्वल पोजीशन हासिल न कर सके, चाहे मैं पोजीशन हासिल करूं या न करूं, मुझे मिले या न मिले, लेकिन मेरे इस दोस्त को पहला नंबर नहीं मिलना चाहिए। तो इससे कोई बहस नहीं, मुझे मिले या न मिले उससे कोई बहस नहीं, लेकिन ये अव्वल नंबर ना आए, ये ख्याल और जज्बा हसद है। अब ये अलामत देख लो अपने अपने अंदर कि अब है कि नहीं है। गुस्से की भी अलामतें थी, वो भी हमारे अंदर पूरी मौजूद है। अब हसद की अलामतें देखो तो ये भी हमारे अंदर पूरी मौजूद है। तो जो पढ़ा जा रहा है, सब चीजें, जितनी बुराइयां, सब हमारे अंदर मौजूद है। उससे पहले क्या पढ़ा गया था? वसाविस, ख्यालात, तो वो हमारे अंदर मौजूद। तो बताओ क्या मौजूद नहीं है? बीमार ही बीमार है ऊपर से लेकर नीचे तक। या मसलन एक शख्स बड़ा मालदार है, अब आपके दिल में ख्याल आ रहा है कि इसके पैसे कम हो जाए, उसकी आमदनी कम हो जाए, ये जज्बा हसद है। तो ये तो अच्छी चीज आगे बढ़ाने की अगर सोचे तो वो हसद नहीं है, खैर ख्वाही है, भलाई है। तो फरमाया इसकी आमदनी कम हो जाए, ये जज्बा हसद। या मसलन एक शख्स की इज्जत और शोहरत है, लोग उसकी तरफ ज्यादा रुझू करते हैं, अब दिल में ये कुड़न हो रही है कि लोग उसकी तरफ क्यों माइल हो रहे हैं, और दिल में ये ख्याल आ रहा है कि उसकी इज्जत और शोहरत खत्म हो जाए, ये हसद है। ये सारी मिसालों से पता चल गया हसद की। एक होता है हसद और एक होता है रश्क। फजाइल कुरान के अंदर वो हदीस आती है ना, ला हसद इल्ला फिस्नतैन, क्या हसद अगर जायज होता तो दो इंसानों में, दो चीजों में। तो वहां हसद का तर्जमा फरमाया, वो रश्क गिबता बताया। तो रश्क का करना जायज है। एक गिबता होता है जिसको उर्दू में रश्क कहते हैं, वो ये है कि जब दूसरे शख्स के पास कोई नेमत देखी तो ख्याल आया कि उस शख्स के पास ये नेमत है, अल्लाह ताला ये नेमत मुझे भी अता फरमा दे, उसके पास जो है वो नेमत मुझे भी अता फरमा दे और उसके पास भी ये नेमत रहे। मसलन उसकी सेहत अच्छी है, अल्लाह ताला मेरी सेहत भी अच्छी कर दे, उसके पास दौलत है, अल्लाह ताला मुझे भी दौलत अता फरमा दे, या मसलन फुला के पास इल्म ज्यादा है, अल्लाह ताला मुझे भी इल्म अता फरमा दे। ये रश्क है, शक्ल एक है, लेकिन फर्क क्या है कि उसमें उसके जवाल की फिक्र है और इसमें मुझे भी मिल जाए, उसके जवाल की फिक्र नहीं, उसके पास से चली जाए ये फिक्र नहीं, उसके पास है मुझे भी अता कर दे। और हसद के अंदर ये है कि उसके पास है उसके पास से खत्म हो जाए, अब चाहे मुझे मिले या न मिले, अल्लाह ताला मुझे भी इल्म अता फरमा दे, उसके पास इल्म है अल्लाह मुझे भी इल्म अता। और हसद में क्या है कि उसका जो इल्म है वो मैं बर्बाद कर दू या उसका बर्बाद हो जाए, मुझे इल्म मिले ना मिले कोई बात नहीं। ये रश्क। और रश्क क्या है कि کہ اس کے پاس علم ہے، اللہ مجھے بھی علم دے، یہ عرش کا ہے. اس میں دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اپنے لیے بھی اسی نعمت کے حصول کی خواہش ہوتی ہے، یہ رشک کرنا منع نہیں ہے، جائز ہے. جبکہ حسد میں خواہش ہوتی ہے کہ مجھے نعمت ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس سے زائل ہو جائے، یہ حسد ہے، غبطہ. جی، فضائل قرآن کے اندر یہ حدیث ہے، اس کا یہی ترجمہ کیا ہے، اس کی تفصیل کی، اس میں حسد کا لفظ آیا کہ حسد اگر جائز ہوتا تو دو چیزوں میں، تو وہاں پر فرمایا یہاں حسد سے مراد غیبتہ ہے، رشک ہے، وہ حسد نہیں جو بتایا جاتا. یہ حسد بڑی خراب چیز ہے، بڑی خراب چیز ہے. اگر صرف دل میں خیال آ گیا کہ یہ شخص مجھ سے فلاں چیز میں آگے بڑھ گیا ہے، دل میں خیال آ گیا کہ یہ شخص مجھ سے فلاں چیز میں آگے بڑھ گیا ہے، اور اس خیال کے نتیجے میں دل میں تکلیف اور صدمہ اور رنج ہو رہا ہے، لیکن اس رنج اور صدمہ کا کوئی اثر اپنے عمل سے ظاہر نہیں ہونے دیا، تو یہ صدمہ اور رنج غیر اختیاری طور پر پیدا ہوا ہے. اب تیسری بات اس میں کیا آئی کہ ایک تو یہ رنج اور غم ہونا، حسد ہونا، یہ فطری چیز ہے. بھائی کسی کی تعریف ہو رہی ہے تو میرے دل میں اس کا رنج اور غم ہوگا، صدمہ ہوگا، یہ تو ہوگا، یہ غیر اختیاری. لیکن اس کو ظاہر کرنا عمل سے یا غیبت سے، یا اس کی برائی بیان کرنا کہ تم برائی اس کی اچھائی بیان کر رہے ہو، میں جانتا ہوں کہ کتنا کیا ہے، وہ جانے دو بس، ایسے اشاروں میں جو باتیں کرتے ہیں نا، تو یہ اس کو عملاً ظاہر کرنا، یہ برا ہے. اگر دل میں ایسا رنج ہوا کسی کی تعریف کو سن کر تو یہ حسد کی علامت ہے، لیکن ابھی بھی اس پر پکڑ نہیں ہے. یہ رنج اور صدمہ غیر اختیاری طور پر پیدا ہوا ہے، اور غیر اختیاری طور پر جو چیز ہوتی ہے اس پر پکڑ نہیں ہے. اس کے بارے میں حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیفیت انسانیہ ہے. اس کے بارے میں فرمایا یہ کیا ہے، کیفیت انسانیہ ہے، جس میں انسان معذور ہے، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، بشرطے کہ صرف دل کے اندر تک رہے، نہ اس رنج کا کوئی اثر اپنے کسی عمل سے ظاہر ہو، یعنی زبان سے یا عمل سے، اور نہ اس رنج کے مقتضا پر، جو رنج ہوا ہے نا اس کے تقاضے پر عمل ہو، اس حد تک کوئی گناہ نہیں. دیکھو کتنی بہترین بات بتا دی، کیونکہ یہ تو ہر ایک کے دل میں آئے گا کسی کی طرح، لیکن دل میں ہے نا، وہ نکل جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد. تو فرمایا اس حد تک تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ نہ نکلی تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان اس پر عمل شروع کر دیتا ہے، کبھی زبان سے یا عمل سے. ہاں، گناہ اس وقت ہوگا جب اس حسد کے نتیجے میں اس کی بدخواہی میں کوئی کام کر گزرے. مثلا دل میں خیال آیا کہ یہ شخص مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے، دل میں خیال آیا کہ یہ شخص مجھ سے آگے بڑھ گیا ہے، اب میں لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کروں تاکہ اس کی عزت میں کمی آئے، تاکہ اس کی عزت میں کمی آئے، یا کوئی ایسی تدبیر اختیار کرے جس کے نتیجے میں اس کی دولت کم ہو جائے، اس کی صحت کم ہو جائے، اس کی تعریف کم ہو جائے، اس کا علم کم ہو جائے، لوگوں پر اس کے اثرات کم ہو جائے، لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ اس سے ہٹ جائے، یا اس کے لیے بد دعا کرے کہ یا اللہ اس کی فلاں نعمت اس سے زائل ہو جائے. یا تو یہ عمل کرے لوگوں کے سامنے، یا پھر بد دعا کرے کیا ہے کہ اللہ فلاں نعمت اس سے زائل ہو جائے، یا لوگوں کے سامنے اس کی غیبت کرے، یا مجمع کے سامنے اس کو ذلیل کرنے کی فکر کرے، یا جب اس سے ملاقات ہو تو اس کو سلام نہ کرے، وغیرہ وغیرہ. جب حسد کے نتیجے میں حسد کرنے والا یہ اعمال کرے گا، تب یہ حسد गुना और मासियत की शक्ल इख्तियार करेगा। जब ये सारा अमल करेगा तो फिर गुना और मासियत की शक्ल इख्तियार करेगा, वरना पहले दर्जे में तो रंज हुआ है। फरमाया इसमें इंसान माजूर है, लेकिन जब तक हसद के नतीजे में सिर्फ दिल में एक सदमा और तकलीफ पैदा हुई है, उस हद तक हसद गुना और मासियत नहीं, क्योंकि ये बात गैर इख्तियारी तौर पर पैदा हुई है और उसमें इंसान माजूर है। लेकिन अहयाउल उलूम में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब ये हसद दिल में पैदा हो और दूसरे के खिलाफ दिल में एक कुढ़न पैदा हुई कि ये मुझसे आगे क्यों बढ़ गया, अगरचे गैर इख्तियारी होने की वजह से इंसान उसमें माजूर है और ये बराए रास्त गुना नहीं, लेकिन ये ख्याल और कुड़न भी बड़ी खतरनाक है। अंदर अंदर है, गुना नहीं लेकिन बड़ी खतरनाक है, क्योंकि अगर ये ख्याल दिल में कुछ अरसे तक बाकी रहा, कुछ वक्त तक बाकी रहा, तो यही ख्याल बिलाखिर उसको गुना, मासियत और गुनाह में मुब्तला कर देगा और उसके नतीजे में उससे कोई ना कोई बदख्वाही का अमल दूसरे के खिलाफ सरजद हो जाएगा। लिहाजा चाहे हसद का ख्याल बिला इख्तियार आया हो, लेकिन इस हसद को दिल में रखना और उसकी परवरिश करना बड़ा खतरनाक है। इसलिए न इस ख्याल की परवरिश करो न उसको दिल में बाकी रखो। जी, अब जो ख्याल आ गया है, जाहिर बात है किसी की तारीफ सुनकर, तो इस ख्याल को कैसे निकाले, तो उसका इलाज के लिए तीन काम करो। इसके इलाज के लिए तीन काम करो, बल्कि इस मौका पर उसके इलाज के लिए तीन काम करो। पहला काम यह है कि जो ख्याल दिल में आया है उसको बुरा समझो, कि ये ख्याल जो मेरे दिल में आया है ये बुरी बात, किसी मुसलमान के बारे में ऐसी बात सोचना बहुत बुरा है। इस तरह इस ख्याल की बुराई का तसव्वुर करो। तो एक काम क्या करो, जो ख्याल दिल में आया उसको बुरा समझो। दूसरा काम ये करो कि जिस आदमी के बारे में ख्याल पैदा हुआ है उसके मुहासिन, उसकी अच्छाइयों का इस्तेहजार करो, उसकी अच्छाइयों को सोचो, खास तौर पर उन अच्छाइयों का जिनका ताल्लुक तुम्हारी जात से हो। मसलन अगर तुमको उसके जरिए किसी मौका पर किसी दर्जे में नफा पहुंचा है तो गोया के उसका तुम्हारे ऊपर एहसान है, यानी उसकी वो अच्छाइयां जो उसने हमारे साथ की है उसको सोचो। जो तुम्हारे ऊपर एहसान है, अगर कोई अच्छाई किए, अगर ऐसा हुआ है तो खास तौर पर उस एहसान का इस्तेहजार करो। तो जो किसी की तारीफ सुनकर दिल में जो हसद की जो आग भड़की है, जो गैर इख्तियारी है, अगरचे वो मासियत नहीं है, वो ख्याल है, लेकिन इस ख्याल को भी दूर करना है, तो उसको दूर करने के तीन काम करने होंगे। तो पहला काम, उसको बुरा समझो। क्या भाई? बुरा समझो। दूसरा काम कि उसकी अच्छाइयों को सोचे, और खास करके वो अच्छाई जो उसने मेरे साथ की हो, मुझे हसद हुआ है ना, तो उसने मेरे साथ जो की हो तो वो सोचे, नहीं है तो उसकी और भी कोई फजाइल और अच्छाइयां होगी उसको। तीसरा काम ये करो कि अगरचे तुम्हारे दिल में इसके हसद का ख्याल आ रहा है और हसद का तकाजा ये है कि उसको तकलीफ पहुंचे, जाहिर बात है हसद है तो हसद का तकाजा क्या है कि मैं उसको तकलीफ पहुंचाऊं, तो उसको नीचा दिखाया जाए, उसकी बुराई हो, ये सब होता है हसद का तकाजा। लेकिन क्या करो, बतकल्लुफ और जबरदस्ती उसके हक में दुआ करो कि या अल्लाह इसको और ज्यादा तरक्की अता फरमा। तीसरा काम क्या करो, उसके लिए और ज्यादा तरक्की की दुआ करो, बतकल्लुफ। जी, अजीब इलाज है, कभी हसद फिर पास में भी नहीं आएगा। तो पहला काम, उसको बुरा समझो। दूसरा काम उसकी अच्छाइयों को सोचो, तीसरा काम उसकी तारीफ शुरू कर दो कि या अल्लाह उसको और ज्यादा तरक्की अता फरमा। ये दुआ करना बहुत ही कड़वा घोंट है जी, कड़वा घोंट है, क्योंकि दिल तो चाह रहा है कि वो जलील और ख्वार हो, लोगों के दिलों में उसकी वक्त कम हो और वो आगे तरक्की न करे, लेकिन आप उसके लिए दुआ कर रहे कि अल्लाह उसको और ज्यादा तरक्की दर्जात अता फरमा जी, उसके इल्म में तरक्की अता फरमा, उसकी दौलत में तरक्की अता फरमा, उसकी सेहत में तरक्की अता फरमा, ऐसी दुआ करें। और जब वो सामने आए तो उससे इब्तिदा बिस्सलाम करो, उसकी ताजीम इकराम करो और लोगों के सामने उसकी तारीफ और अच्छाई बयान करो। ऐसा करने से आपके सीने पर आरे चलेंगे, लेकिन हसद का इलाज यही है, हसद का इलाज यही है। हसद के इलाज के लिए कोई वजीफा नहीं है कि चलो इतनी मर्तबा ये कलिमा पढ़ लोगे तो हसद चला जाएगा जी। गुस्से के इलाज के लिए भी कोई कलिमा नहीं है, बस हिम्मत से काम लेना पड़ेगा जी। बहरहाल ये जो तीन काम बताए, अगर हसद करने वाला शख्स ये तीन काम नहीं करेगा तो फिर जो गैर इख्तियारी ख्याल दिल में आया था वो बिलाखिर मासियत पर मुंतज होकर नतीजे में मासियत पर करेगा, मासियत पर यानी मासियत जाहिर हो जाएगी और वो ख्याल तुम्हें हलाकत में डाल देगा, वो ख्याल फिर हलाकत में डाल देगा। और अगर ये तीन काम कर लिए तो इंशाअल्लाह वो जो गैर इख्तियारी ख्याल आया था वो माफ हो जाएगा। अब दोबारा हजरत वाला का मलफूज देख ले, हजरत फरमा रहे हैं देखो अब दोबारा सुनो, एक तो कैफियत इंसानिया है, इस कैफियत इंसानिया से मुराद वो गैर इख्तियारी ख्याल है जो दिल में आ गया। मसलन किसी के तुमसे आगे बढ़ने से तुम्हारे दिल पर चोट लग गई, उसमें इंसान माजूर है, इसमें इंसान यानी अल्लाह ताला के यहां उस पर मुआखजा नहीं। दूसरा ये कि इस ख्याल के मुक्तजा पर अमल करे, मसलन उसके दर पे आजार हो गया, उसकी चुगलियां शुरू कर दी, उसकी गिबत शुरू कर दी, उसको जलील और ख्वार करने के लिए उसके पीछे पड़ गया, उसके अंदर इंसान माजूर यानी गुनेगार है। पहला माजूर आयन के साथ है, मीम आयन, और दूसरा मीम अलिफ माजूर यानी गुनाहगार है। तो पहली कैफियत में माजूर है, एक कैफियत ही इंसानिया है, और दूसरे के अंदर अगर उसके मुक्तजा पर अमल किया तो उसमें इंसान माजूर यानी गुनहगार है। तीसरा ये कि उसके मुक्तजा की मुखालिफत करे, जैसे बताया ना कि तीन काम करना ये मुखालिफत हुई, उसके मुक्तजा की मुखालिफत करे। मसलन दिल में तो ये ख्याल आ रहा है कि किसी तरह उसको जलील और ख्वार करूं, लेकिन उस तकाजे के बरखिलाफ उसकी तारीफ कर रहा है, उसके लिए दुआ कर रहा है, इस अमल के नतीजे में इंसान माजूर है। तीनों में मीम मीम है, वहां मीम मीम ऐन के साथ, दूसरे में मीम मीम अलिफ के साथ और जोर माजूर, और तीसरे में मीम अलिफ के साथ लेकिन जूर माजूर, माजूर यानी इससे करने पर उसको अजरो सवाब मिलेगा। तो तीसरे में इंसान माजूर यानी ऐसा करने पर उसको अजरो सवाब मिलेगा, मासियत मासियत यानी गुना। तो पहला माजूर है, दूसरा माजूर है, तीसरा माजूर है, यानी ऐसा करने पर उसको अजर और सवाब मिलेगा। पहले में तो गैर इख्तियारी चीज है इसलिए माजूर है, और दूसरे में उसके मुक्तजा पर अमल कर लिया तो फरमाया गुना, और तीसरे में मुक्तजा पर अमल नहीं किया बल्कि उसके निकालने की कोशिश की तो उस पर माजूर है, अजर मिलेगा सवाब मिलेगा। नफ्स के इस ख्याल की मुखालिफत का नतीजा यह होगा, नफ्स की इस ख्याल की मुखालिफत का नतीजा यह होगा कि शैतान तुम्हारे दिल में हसद का ख्याल इसलिए लाया था, शैतान तुम्हारे दिल में हसद का ख्याल इसलिए लाया था ताकि तुम्हें जहन्नम में पहुंचा दे, इसलिए लाया था क्योंकि हसद के नतीजे में जो आमाल तुम करते वो आमाल तुमको तबाह कर देते और जहन्नम में पहुंचा देते। लेकिन तुमने ये किया कि जब हसद का ख्याल आया तो तुमने इस ख्याल के तकाजे के खिलाफ वर्जी शुरू कर दी, काम करना शुरू कर दिया। मसलन उसके हक में दुआ शुरू कर दी, उसकी तारीफ शुरू कर दी। हाँ, जैसे तीन तीन चीजें बताई कि उसको बुरा समझो, पहला तो क्या बताया उसको बुरा समझो, और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम कि इसके बाद उसकी अच्छाइयां सोचो, तीसरा काम उसके लिए दुआ करो। तो ये सारी चीजें पर, तो मतलब उसके हक में दुआ शुरू कर दी, उसकी तारीफ शुरू कर दी। तो ख्याल अव्वल तुम्हें मासियत में मुब्तला करने के लिए आया था, लेकिन उसके मुक्तजा के खिलाफ अमल करने के नतीजे में बिलाखिर नेकी और सवाब का खजाना तुम्हारे नामे आमाल में जमा हो जाएगा। तो पहला ख्याल जहन्नम में ले जाने के लिए आया था, उसके मुक्तजा पर अमल न किया तो जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह 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 अल्लाह, कदम कदम पर हसद होता रहता है। अल्लाह, हमारे एक बुजुर्ग हजरत बाबा नजम अहसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह के मजाज़े सोहबत थे, वो बड़ी अजीब व गरीब बातें किया करते थे। एक मर्तबा फरमाने लगे कि गुनाह बड़ी अच्छी चीज है। क्या करने लगे कि गुनाह बड़ी अच्छी चीज है। हमने कहा हजरत, हजरत गुनाह और अच्छी चीज होना, समझ में बात नहीं आई। अब देखा एक जुमला बोलकर सबके दिमाग को कैसा अटेंशन कर दिया ना। देखो बात करने का स्टाइल कि गुनाह बोलकर सबके दिमाग को अटेंशन कर दिया। क्या कि गुनाह बड़ी अच्छी चीज है। अब हर इंसान गाफिल होगा, वो भी सोचे अरे बोले क्या पढ़ा। गुनाह और अच्छी, तो फरमाया हजरत गुनाह और अच्छी चीज होना, समझ में बात नहीं आई। फरमाया कि हाँ गुनाह बड़ी अच्छी चीज है। बड़ी अच्छी चीज है, इसलिए कि जब गुनाह का तकाजा दिल में पैदा हो और इंसान जबरदस्ती करके उस गुनाह से बचे तो उसके दर्जात कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। देखा, अब ले लो पहला जुमला तो कितना बुरा लगा कि गुना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब दूसरा जुमला कि फरमाया इसके तकाजे पर जब अमल नहीं करता दबाता है तो इंसान कितने दर्जात ऊंचे पहुंच जाता है, तो गुना अच्छी चीज होगी कि नहीं होगी भी। कहीं से कहीं पहुंच जाता है। अगर गुना न होते तो ये दर्जात न बढ़ते। अल्लाह, गुना न होते तो ये दर्जात न बढ़ते। तो अब देखो बात की स्टाइल कि गुना बहुत अच्छी चीज है, अब सामने वाला चौंक जाएगा। अब जो जवाब सुनेगा ना तो फिर उसके दिल में बैठ भी जाएगा। तुम लोग भी जाग गए ना, सोने वाले भी जाग जाएंगे। तो फरमाया देखो गुना न होते तो दर्जात न बढ़ते, क्योंकि गुना इंसान के दिल में जो मासियत और नाफरमानी का तकाजा पैदा करता है और फिर इंसान उस तकाजे की मुखालिफत करता है और उसको कुचलता है तो उसके दर्जात में कहीं से कहीं तरक्की हो जाती है, मशरिक से मगरिब निकल जाता है, इतना ऊपर जाता है हवाई जहाज की तरह तरक्की होती, तकाजे पर अमल नहीं करता। देखिए एक वो शख्स है, आए आए, एक वो शख्स है जिसके दिल में गुनाह का ख्याल ही नहीं आया। देखो अब जरा देखो मिसाल से, एक वो शख्स है जिसके दिल में गुनाह का ख्याल ही नहीं आया, न उसको गुनाह करने का मौके मैसर आए और वो गुनाहों से बचता हुआ गुजर गया। और वो गुनाहों से बचता हुआ गुजर गया तो इंशाअल्लाह वो अजाब से नजात पा जाएगा। गुनाहों का न मौका मिला न ख्याल आया, और फिर वो गुनाहों से बचा है तो वो अजाब से नजात पाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन दूसरा शख्स वो है कि कदम कदम पर उसके दिल में गुनाहों के तकाजे दाइये पैदा हो रहे हैं, गुनाहों के मौके भी मैसर आ रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ाता है तो उसके सामने गुनाह का एक तकाजा आकर खड़ा हो जाता है, और वो गुनाह कहता है मुझे कर लो। वो किस तरह अपने आप को उस गुनाह से बचाकर आगे बढ़ता है, जब दूसरा कदम बढ़ाता है तो फिर एक गुनाह का तकाजा पैदा होता है, फिर वो अपने आप को किसी तरह उससे बचाकर आगे बढ़ जाता है तो एक दाइया और पैदा हो गया। इस तरह जिंदगी गुनाहों के तकाजों से मुकाबला करते हुए कब्र तक पहुंच गया। फरमाया कि ये जो दूसरा शख्स है जो गुनाहों की कश्मकश से गुजरता हुआ और अपने दामन को गुनाहों से बचाता हुआ कब्र तक पहुंचा है, उसका दर्जा पहले शख्स के मुकाबले में कहीं आगे है, बहुत आगे है। ये क्यों आगे बढ़ गया? ये गुनाहों की वजह से आगे बढ़ गया। ये क्यों आगे बढ़ा? ये गुनाहों की वजह से आगे बढ़ गया। इसलिए हजरत बाबा नजम अहसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि गुनाह बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि गुनाहों के तकाजों के कुचलने से दर्जात बुलंद होते हैं। हाँ, उससे तवाजु भी आती है, याद रखना, क्योंकि इंसान फिर पछताता है। एक इंसान से गुनाह नहीं होता है तो वो अपने आप को समझता है मैं अच्छा हूं, और जहां उससे कुछ उसमें हो गया तो फिर कहता है यार मैं तो उससे वो अच्छा है, मैं तो बुरा हूं। क्यों? तो देखो, गुनाहों से तवाजु आई, क्योंकि उससे वो गलत हो गए। एक इंसान अपना रिकॉर्ड जब रखता है ना, वो मेरे रिकॉर्ड के अंदर क्या है कि मेरे तो 20 साल से तकबीर उला नहीं छूटी है, तो उसके अंदर एक बीमारी आ गई, और जहां उसे छूट गया, जमा छूट गई कोई उसकी वजह से, अब वो गुनाह हो गया। हाँ, हालांकि मजबूरी को है, अब फौरन उसके अंदर तवाजु आएगी, बोले मैं तो कुछ भी नहीं, फूला बहुत अच्छा था। हाँ, तो उससे तवाजु भी बाकी रहती है और दर्जात भी बुलंद होते हैं उसके तकाजों पर। वो बाद में तोबा करने से भी दर्जात होते हैं और तकाजों को दबाने से भी दर्जात मिलते हैं। शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग लड़ी है, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनका नाम तो आपने सुना होगा। इनके खास खादिम जो थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, इनके खास खादिम थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग लड़ी और जिहाद किया, उनको अंग्रेजों से बड़ी नफरत थी, उनकी हर चीज से नफरत थी, अंग्रेजों से नहीं, उनकी हर चीज से बड़ी नफरत थी, और यह नफरत गलबे हाल तक पहुंची हुई थी। किसी साहब ने आकर कहा, हजरत आप हर वक्त अंग्रेजों की बुराई ही बयान करते रहते हैं, आखिर उनमें कोई अच्छाई भी तो होगी, दुनिया में कोई बुरी चीज ऐसी नहीं है जिसमें कोई ना कोई अच्छाई ना हो, तो अंग्रेजों में भी कोई तो अच्छाई होगी, कभी आप उन अंग्रेजों की अच्छाई भी बयान कर दिया करें। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हाँ भाई, इन अंग्रेजों के कबाब बनाकर खाए जाए तो बड़े लजीज होंगे, इनमें ये एक अच्छाई है। अजीब, इनके कबाब बनाकर खाए जाए तो ये बड़े लजीज होंगे, इनमें एक अच्छी खुलासा। खैर, बहरहाल गुनाह की अच्छाई ये है कि इन गुनाहों के तकाजों को कुचला जाए, उनके तकाजों को दबाया जाए, तो उससे इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं। इसी तरह हसद का जो ख्याल तुम्हारे दिल में आया था, ये अगरचे तुम्हें गुनाह के अंदर मुब्तला करने के लिए आया था, लेकिन जब इस ख्याल के तकाजे के खिलाफ तुमने अमल किया तो ये उल्टा तुम्हारी तरक्की दर्जात का सबब बन गया। आया था हलाक करने के लिए और वो हमारे लिए तरक्की का जरिया बन गया। अल्लाह अकबर। तो देखो देखो इसके अंदर भी कितनी अच्छाई निकली कि इसके तकाजा से आज लोग घबरा जाते हैं। अरे इसके ऊपर तुम अमल करोगे, इसके तकाजे को दबाएंगे तो और ज्यादा तरक्की है, और वो तरक्की इतनी बड़ी इबादत करके भी नहीं पहुंच सकते जितनी इस पर तकाजे को दबाकर पहुंच सकते। खजा खिलाफ तुमने अमल किया तो उल्टा तुम्हारी तरक्की के दर्जात का सबब बन गया। इसी तरह गुनाहों के जितने दाई और तकाजे हैं वो बिलाखिर इंसान की तरक्की दर्जात का जरिया बन जाते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे दिल में हसद के ख्यालात आते हैं तो उनको तरक्की दर्जात के हुसूल का जरिया बना लो, तो फिर इंशाल्लाह हसद के ख्याल से कोई जरर नहीं होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर मुराकबा कर ले।